पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
चरित्रबोध और इसके ये 1870 पृष्ठ पर 1870 पर यहां देखिएगा। कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत नंबर एक है नारायण दास का पंथ। यहां इन्होंने ये नारायण दास पंथ गलत लिख दिया, क्योंकि नारायण दास तो कति कबीर से भी मुक्त, कबीर जी से भी मुक्त था, उसने तो ये स्वीकार ही नहीं किया था। यहां लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ और दूसरा याज्ञोदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ और छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी सातवा, आठवा कमाली पंथ, ये कमाल का पंथ, कमालिये, ये कमालिये लिखना था, राम कबीर पंथ नौवा, परम धाम की वाणी दसवा और ग्यारहवा जीवा पंथ और बारहवा गरीबदास पंथ। ये गरीबदास छुड़ानी वाले उनका बारहवा पंथ है। ये अब यहां क्लियर लिखा है और आगे देखो इनकी वाणी में फिर कैसे लिखा है। अब इससे यह समझ में आओगी ये कहां बोले हैं। अब हम आ जाते हैं कबीर वाणी बोध सागर, कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ये कबीर परमेश्वर की वाणी है। और ताते आगम कह हम व्याख्या, हमने भविष्य की बात बता दी तेरे को धर्मदास। और वंश हमारा, ये प्रथम लिखना था, प्रथम हमारा चूड़ामणि शाखा, ये चूड़ामणि है प्रथम शाखा हमारी। यह उन्होंने वहां प्रथम लिख दिया, इन्होंने जग्गू लिख दिया दूसरा, ये प्रथम ये लिख होना चाहिए था, प्रथम ने जग्गू लिख दिया, जबकि यहां लिखना चाहिए था प्रथम, ये चूड़ामणि को प्रथम लिखना चाहिए था जब पूरे होंगे 12। फिर भी हम इनकी जो अज्ञानता इन्होंने की है स्पष्ट है। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम समझो। अब प्रथम जागू जैसे आपने देखा था यहां पर, क्योंकि ये पैरेलल चलेगा जब समझ में आओगी, बहुत उड़ जावा है। प्रथम नारायण दास लिखा नहीं, यहां लिखना था ये चूड़ामणि, और दूसरा जागू दास जागू, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, टकसार का पंथ। अब ये याद रह जाएंगे आपके, दोबारा फिर दिखाऊंगा यहां पर। अब हम कबीर वाणी कबीर बोध सागर में आगे 136 पृष्ठ पे, ये प्रथम जागू लिख दिया इन्होंने, ये दूसरा जागू होना चाहिए था, और तीसरा सूरत गोपाल मूल निरंजन की वही नो के नो, वहां क्लियर लिखा हुआ है। टकसार का भेद, ये बीजक पंथ जीवा का पंथ बोले इसने, फिर है छठवां है सतनामी, फिर राम कबीर पंथ, ये ज्ञानी पंथ दसवां, और ग्यारहवां ये भेद परम धाम की वाणी, ये परम धाम की वाणी जो पंथ है ये दसवां है, दसवां है, ये ग्यारहवां, ये दसवां लिखा। अब बारहवां संवत 1775 हुई, ये मिसप्रिंट हो रहा है यहां पर, संवत 1775 है, नहीं है 74 होना चाहिए। सन संवत संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म है और ये बारहवां पंथ गरीबदास पंथ है। सन संवत 1774 और सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। और ता दिन प्रेम प्रकट है जग सोई, यानी गरीबदास जी के बाद कबीर साहब की फिर से महिमा हुई थोड़ी थोड़ी। आगे देखो, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, साख हमारी लेस जीव समझावे, असंख्यों जन्म ठोर नहीं पावे। ये बारहवें पंथ प्रगट है वाणी, ये बारहवें पंथ के विषय में बता रहे हैं कि ये मेरी महिमा की वाणी प्रगट फेर होगी। बारहवें पंथ, बारहवां पंथ गरीबदास पंथ, फिर देख लीजिए, ये है कबीर चरित्र बोध में और 1870 पे कबीर साहब के 12 पंथों का, ये बारहवां पंथ गरीबदास पंथ है। अब बारहवें पंथ का हम फिर आगे यहां पर 136-137 पर बोध सागर में और कबीर वाणी चैप्टर पे। बारहवें पंथ प्रगट हुआ वाणी, हवे हवे होता है, बारहवें पंथ प्रगट हुआ वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी, मेरी यथार्थ ज्ञान फिर से प्रगट करवाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी में सारा ज्ञान फीड कर दिया, उन्होंने फिर बोला और लिपिबद्ध किया गया। अब कहते हैं बारहवें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, हमारी वाणी को समझने की चेष्टा करेंगे गरीबदासी पंथ वाले, लेकिन समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये बारह पंथ हमी को ध्यावे। अब गरीबदास पंथ तक भी परमात्मा ने बैन लगा दिया कि ये पार नहीं हो सकते। फिर कहते हैं बारहवें पंथ हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में कहते आगे चल के हम ही आवेंगे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। क्लियर हो गया कि बारहवें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, जो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर गए हैं वो फिर सुचारू करवा दूंगा और बारहवें पंथ में हम ही आवेंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने को, लेकिन शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें, अब देख लेना कुछ दिनों में इस विश्व में एक ही पंथ रहेगा, एक ही भक्ति का मार्ग रहेगा। अब फिर क्या कहते हैं कि प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगर मांडो मैदाना, धर्मराय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित काजी। अब कहते हैं प्रथम चरण जो होगा, तीन चरण बताए हैं, एक प्रथम, एक लास्ट और ये मध्य का। तो प्रथम कलयुग में वहां से शुरू हुआ, परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे, लाखों लोगों के व्यक्तियों की उपस्थिति में, ये प्रथम चरण था। अब यहां से समझ में आओगी कि बारहवें पंथ में मेरी वाणी प्रगट होगी, सही ज्ञान उससे मिलेगा। अब यहां कहते 5500 तब ये शब्द होगा साचा, ओए होए, कहते 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब ये मेरी बात साची होगी जो आज मैं बता रहा हूं तेरे को, कि हम प्रगट होंगे, सब ज्ञान सब पंथों को मिटा के एक पंथ चला देंगे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बार ना जाई, ये बार है। और पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त रखो, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रख्या, गोय माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। अब ये 12 पंथों का नाश हो जाएगा, क्योंकि उनके पास भक्ति का कुछ नहीं, उनकी विधि का पता। अब सच्चाई अब हम प्रकट करेंगे। अब यहां देखिएगा, ये कबीर बोध कबीर वाणी हम पढ़ रहे हैं, इसमें और कंसेप्ट क्लियर कर दिया। 134 पृष्ठ पे यहां लिखा है कि वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी हैं, ये प्रथम वंश तो उत्तम, दूसरा वंश अहंकारी वो जागू, और तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश ये निंद्रा, और छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, और आठवां वंश द्वादश पंथ विरोध, नौवां पंथ वंश पूजा, और दसवें वंश प्रकाश, ग्यारहवें वंश प्रगट पसारा, और बारहवें वंश हवे प्रगट उजियारा। बारहवें में गरीबदास जी बारहवां पंथ हो गए, इनके द्वारा मेरी वाणी का बारहवें वंश प्रगट हुए उजियारा, मेरी वाणी का यानी मेरी महिमा फिर से कुछ उजागर होगी, और तेरहवें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास इव तेरहवां वंश है उस परम पिता का, कहते हैं सारा अंधेरा मिट जाएगा, ईसा ज्ञान देगा वो, सब तरह से सेट कर देगा। तेरहवें वंश मिटे सकल अंधियारा, एति दगा काल की समाई, तत्विंदु की टेक रह जाई, ये काल का इतनी दगा होगी फिर भी तत्व ज्ञान कहीं ना कहीं सदगतों में छुपा ही रह जाएगा। अब आपको जिसलिए सारा कुछ प्रकरण दिया है, जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में स्पष्ट देख लिया कि उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और वो परमात्मा एक सुंदर शरीर को प्राप्त होता है, भासमान शरीर को, और उसके 3 प्रकार का शरीर होता है, और जब उन 3 प्रकार के शरीरों में जो लीला करता है उनमें से एक में शिशु रूप धारण करके आता है, तब कुंवारी गाय से दूध पीता है। अब जैसा कबीर सागर में लिखा था तो वहां इसमें कुरेक्शन करने वालों ने उन्होंने सोचा कि रामानंद से ही जोड़ दिया कि उसने न्यू बता दी तुम कुंवारी गाय का दूध पियोगा, और आगे लिखा वो दूध, वो फिर दूत चला गया, वो दूत का प्रकरण काट दिया इन्होंने। फिर भी मालिक की दया से वो 2 पंक्ति रहेगी। अब गरीबदास जी ने वो निर्णय किया है, क्या अब पढ़कर सुनाते हैं आपको। अब परमात्मा ने जो बताया कि मेरी वाणी प्रकट होगी वर में पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, लेकिन गरीबदास जी की वाणी को भी गरीबदास के पंथ वाले और उससे पहले वाले कोई नहीं समझ सकेगा। ये मेरी वाणी का निर्णय करने की चेष्टा करेंगे पर इनको ज्ञान नहीं होगा, और ये 12 पंथ हमी को जावे अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। अब इस दास के साथ क्या हुआ कि हम छुड़ानी जाते थे जहां गरीबदास, आदरणीय गरीबदास साहेब जी का जन्म हुआ था, जहां परमात्मा कबीर देव जी उनको जंगल में आकर मिले थे, हमारे पूज्य गुरुदेव जी वहां जाते थे, एक लिंक जोड़ना था, पहले लिखा हुआ था। इसलिए गुरु जी के सतलोक जाने के बाद हमारा वहां पर बहुत विरोध हो गया, क्योंकि हम सच्चाई बतावें वो अनुवाद गलत करें गरीबदास जी की वाणी का, तो हमारा उनका पार नहीं पड़ी, हमने अलग से आश्रम सेट करना पड़ा। फिर वो इतने विरोधी हो गए कि हमारे साथ हमारी बताने कितनी उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, वो गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, न्यू है, तो वो कांड करवा दिया करो था कुछ, ये और दूसरे पंथी लाग लिया, ये समाज वाले जो उनकी पोल खोल दी, दास ने सच्चाई बता गए, तो सब ने मिलकर यू पंगा पा दिया। लेकिन भगवान का साथ जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पहले से 1000 गुना आगे बढ़ गया हमारा पंथ, पूरे विश्व में चला गया परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि ये परमात्मा का चलाया हुआ है। और इसमें जो बाधा करता है भगवान के मार्ग में वो तो अंधागदा है, हिरण्यकश्यपु अंधागदा था, छाती तुड़वा के मान्या, कहते हरणा को छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, आचार्य को अवर जुलम इसे करें, तो वो कहते हैं इसे ये पापी, कहते हरणा को छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, वो तो भगत को आवे और कर्म अपने बेटे ने भी मारे अभी मान के बस। तो कहने का भाव ये है कि ये आचार्य को आवे और गुरु और अपने शिष्यन पर मित करें, झूठ बोला झूठ बोला, हम तो प्रमाण दिखाते हैं और जो तुमने लिखा है वो स्वरूप रूप कराते हैं, पता झूठ क्या कहाँ बोल दी मैंने, मत लिखा हुआ दिखाता हूँ, आपके गुरु ने ये लिख रखा है और वेद ये बता रहे हैं, बता झूठ कब बोल गया, मन तो फुर्सत को ना झूठ बोलने की टाइम को नहीं, क्योंकि सारी साची धरी भगवान ने लिख रखी। अब गरीबदास जी की वाणी में पारक का अंग है, चैप्टर है पारक का अंग, उसमें बहुत निर्णायक ज्ञान दिया है। क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदी, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईसको गोदी। अब क्या बताते हैं, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद और मैं के कमल खुशी बहे और लिया ईसको गोद, नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम। अब गरीबदास जी ने पूर्ति की है, जो वो दूत आ गया, दूत चला गया, फिर खुश होया, जो बकवाद कर रहा कि कुछ मिलावट और कुछ कटिंग पटिंग करके उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन हो गया, ये हो गया, अरे सच्चाई ये थी जो गरीबदास जी ने बताया। जैसे आदरणीय तुलसीदास साहेब जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले जो घटना घटी थी, अब कलयुग में एज इट इज लिख दी चौपाइयों के माध्यम से और सबको मान्य है वो, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि रेंज होती है, उस तुलसीदास की रेंज खुल गई थी, वह वह दिव्य दृष्टि खुल गई थी और पीछे की जो चलचित्र की तरह सामने आ जाती सब घटनाएं वो तुलसीदास जी ने लिख दी थी और वो सही है। ऐसे ही गरीबदास जी ने, परमात्मा ने गरीबदास जी की दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया। अब वही जो लीलाएं काशी में घटी थी उसे अरबों खरबों वर्ष पहले सृष्टि जहां से प्रारंभ हुई वहां तक की रेंज मालिक की, क्योंकि ये दूरबीन की रेंज होती है दूरदर्शी की, तो परमात्मा तो गरीबदास जी को रेंज दी वह सबसे दूर तक की रेंज की थी। तो गरीबदास जी ने जो भी वार्ता हुई वो चलचित्र की तरह देखकर जब बोली ये वाणी, क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोदे। शिव भगवान ने जो साधु रूप पकड़े थे बालक रूप परमात्मा को गोद में ले लिया, नजर नजर से मिल गई ही किया ईस परनामे। जब दोनों शक्तियों की आपस में नजर मिली तो उसने परमात्मा को प्रणाम किया शिव जी ने और क्या कहा, धन मोमन धन पूरे ना ये धन काशी नी कामे। कैसे महापुरुष आए, अब वो पहचान तो नहीं सके शिव जी के ये कौन पुरुष है कौन भगवान है, लेकिन उनकी जो लीला छवि और अंदर की, क्योंकि इनके अंदर दिव्य दृष्टि होती है, ये अवश्य महसूस हो गया कि ये बहुत परम शक्ति परम सिद्ध पुरुष है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश से तो बहुत अन्य और भी सिद्ध से अलग अलग वैरायटी की शक्तियां होती हैं, इनसे जो अलग और भी अच्छे संत साधु होते हैं, तो इन्होंने सोचा कि कोई और परम शक्ति है जिसको हम भी नहीं जानते, वहां से कोई अवतार आया है, तो इस जान करके उन्होंने भगवान शिव ने भी प्रणाम किया। सात बार चर्चा करी ये बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धरिया ल्या मोमन एक धैनु। अब सात बार कबीर साहब की बालक रूप में नवजात शिशु रूप में और शिव जी भगवान साधु रूप में खड़े, सात बार बातचीत हुई और वो खड़ी खड़िया देख रहे दोनों पति पत्नी, वो सोच रहे साधु में इतनी करामात है कि मेरा बेटा बुलवा दिया अवश्य ये मेरे बच्चे को दूध भी पिलाएगा। फिर शिव ने कहा उस सिर पे आदर कर मोमिन को कि धन भाग है तुम्हारे, मोमिन माने मुसलमान। नीरू को कहा कि जाओ धन भाग है तुम्हारे घर पे, ऐसे बच्चा आया ही तो परम शक्ति है और इस काशी का भी धन भाग है जहां पर ऐसे संत प्रगट हुए हैं। सात बार चर्चा करी बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धरा ल्या मोमन एक धैनु। एक धैनु ल्या धैन, अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, कुमारी को बिना ब्याई को कुमारी को दूहत है दूध दिया तत्काल, पी वे बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भये दयाल। अब यहां भी स्पष्ट लिख दिया कि कुंवारी गाय का दूध पिया उस बालक ने और वो परमात्मा की उस सूक्ष्म वेद में लीला में भी लिखा है कि जाके संग बैल नहीं लागा, कि एक गाय ला जिसके संग बैल नहीं लागा, यानी कति अनटच। और वेद बताते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8-9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब आते हैं एक सुंदर रूप धारण करते हैं तेजो में, तीन सतीथि उनका रूप है, उनमें से एक सतीथि जो शिशु रूप में प्रकट होते हैं उस समय वो बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। आज तक इतिहास सुना जो किसी भी भगवान का ऐसी लीला हुई हो जो वेद में लिख रखा है, और जिन्होंने भगवान को देखा उन महापुरुषों ने अपनी एफिडेविट दे रखे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया ये काशी महे कबीर हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहेब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये परमात्मा हैं। पुण्यात्माओं आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है, कि इसको अब सुलझाना बहुत ही कठिन हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमें ज्ञान क्या मिला? इसका कारण क्या था? इसका कारण है कि ये जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है। यहां कोई जीव सुखी नहीं, और ये नहीं चाहता ये यहां का जो स्वामी है ब्रह्म जिसको कहते हैं, सर्वपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं, ये नहीं चाहता कि यहां के प्राणियों को परमात्मा के विषय में जानकारी हो। इसको भय बना रहता है कि यदि इनको अपने मूल स्थान का ज्ञान हो गया और वहां के सुख से ये परिचित हो गए, यहां कोई नहीं रहेगा। इस डर से, ये राजनीति से और घटिया राजनीति से हमें यहां रोके हुए है, सुनियोजित षड्यंत्र से हमें यहां बांधे हुए है, रोके हुए है। कोई भी क्रिया देख लो हमने विवश होकर करनी पड़ रही है। शरीर ऐसा दे दिया, यदि इसके अंदर टुकड़ा ना डालेंगे तो ये काम नहीं करे। इसकी रक्षा करनी पड़े, गर्मी सर्दी से भी बचाना पड़ेगा। सारा जीवन हम इसी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, इसी के रख रखाव में पूरा जीवन खो देते हैं, अंत में इसको भी खत्म कर देता है। यदि ये ना नष्ट होता हो तो कोई दिक्कत ना थी। हम इतने ढीठ हो रहे हैं, इन दुखों को भी देख लेते, कोई दिक्कत पड़े रहते अभी। लेकिन ये नष्ट भी साथ होता है, ये डर साथ बना रहता है। कहने का भाव ये है कि जब तक हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होंगे, हम परमात्मा की भक्ति ना तो कर सकते और ना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकते। तो इसके लिए हमने उस परमात्मा को पहचानना है। जैसे आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया था कि पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं ही सतलोक से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। परमात्मा ऊपर सतलोक में रहते हैं, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। अपुनात्मा ये चारों वेद प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाये हुए हैं, जो विशेषकर हिंदू समाज से संबंधित है। और सभी ये कहा करते हैं कि वेद तो एक सत्य ज्ञान है, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सत्य है। इसके साथ साथ पवित्र चारों वेदों के साथ साथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और साथ में पवित्र 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत आदर की दृष्टि से देखता है और इनको सत्य ज्ञान युक्त मानता है, इसको सत्य ज्ञान युक्त मानता है। लेकिन इन ग्रंथों में थोड़ा सा अंतर है। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों का मिलता जुलता ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। और पुराणों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है, और ब्रह्मा जी से आगे सुना उन ऋषियों ने, दक्ष आदि ऋषियों ने, मनु आदि ने, और अन्य ने अन्य से, अन्य ने अन्य से सुनते सुनते उन्होंने कुछ ब्रह्मा जी के विचार, कुछ अपना अनुभव, कुछ अपनी सोच, अलग अलग। जैसे भी 18 पुराणों के 18 वक्ता हैं, 18 पुराण इसलिए होगी कि उनके वक्ता भिन्न भिन्न हैं, उन्हीं के नाम से उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन 18 पुराण बना दिए, वैसे ही 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना जाता है। तो ये जो ज्ञान है पुराणों का, ये गॉड गिवन नहीं है। पवित्र चारों वेद गॉड गिवन है। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के हृदय में डाल दिए थे, इसके अंतःकरण में डाल दिए और समय निर्धारित कर दिया कि इतने समय के उपरांत ही अपने आप इसके श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे परमात्मा की व्यवस्था है, माता को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसमें व्यवस्था की। जब ये पांचों बाहर आ गए, इसने देखा कि इनमें कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है मेरी पोल पार्टियां, किसने ज्योत निरंजन ने। फिर इसने देखा पांचवा वेद जो है ये सारा भेद दे रखा था ऊपर का सतलोक का, कैसे जाना है और किस प्रकार कौन परमात्मा है, तुम यहां कैसे फंसे थे। तो ये ज्योत निरंजन काल ने वो पांचवा वेद नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए भगवान के डर से। इन चारों वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है, साथ साथ में इसकी भी महिमा है। ये कितने सत्र का भगवान है, इसकी भक्ति से कितना लाभ हो सकता है। फिर इस काल ने ही ब्रह्म ने चारों वेदों को पढ़ा, उस चारों वेदों वाले ज्ञान को श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने बोला। इसमें थोड़ा सा इसने एकाध जगह गड़बड़ करने की चेष्टा की है और उसमें कहा कि ये मेरा मत है। यदि इसका मत वेदों से मेल खाता है तो वेद ज्ञान है वो, और इसका मत वेदों से मेल नहीं खाता है तो इसका अपना ही विचार है, वो भी नहीं मानने हमने। हमने केवल वेद ज्ञान को मानना है और पांचवा वेद परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला था उसको मानना है। 18 पुराणों को हमने सहयोगी शास्त्र मान रखा है कि इसमें जो लिखा है इनमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जीवनी है और इन्होंने लिख रखी है, तो इसको हमने इसलिए सत मानना है कि इनमें जो लिखा है इनकी सतीचि व सही लिख रखी है। और जो पुराणों में वेदों के विपरीत ज्ञान है वो मान्य नहीं है। विपरीत कौन सा है, जैसे वे ऑफ वर्शिप। बाकी जो ज्ञान है वो तो वेदों से अलग है ही, वो तो हमने सिर्फ उनकी अपनी जीवनी है, ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, विष्णु जी की क्या स्थिति है, भगवान शंकर की क्या स्थिति है, इस तरह की कहानियां इसमें लिखी हुई है, इनकी लीला लिखी है, उसके साथ साथ फिर अपने ऋषियों ने अपना अनुभव लिखा हुआ है। तो उनका अनुभव यदि वेदों के अनुसार नहीं है, वे ऑफ वर्शिप उसकी ऐसी नहीं है तो नहीं मानेंगे। उन्होंने अपनी मर्जी से किसी में कोई मंत्र लिखा है, कोई कुछ लिखा है, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनका अपना सोच है, वेद ज्ञान नहीं है वो। तो इस कारण से वेदों का ज्ञान जो है वो फाइनल है और पुराणों का ज्ञान भी हम केवल इसलिए मानते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर कहा करते थे, सर्वेश्वर कहते थे, कालज्ञ और मृत्युंजय कहते थे, और वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। आज हमने उन पुराणों में जो पढ़ा वो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति थी, जैसा वो बताते थे उसके विपरीत है और पुराण वही है। तो हमने पवित्र वेदों में ये जानना है कि उन वेदों में क्या लिखा है, क्योंकि वेद परमात्मा की ही महिमा से परिपूर्ण है और उन वेदों ने हमें क्या बताने की चेष्टा की है। हमने उन पवित्र सदग्रंथों से ये जानना है कि भगवान कैसा है और कौन है, कहाँ रहता है, उसको कैसे पाया जाता है, हम यहां किस लिए दुखी हो रहे हैं, हम यहां क्यों भटक रहे हैं, ऋषि महर्षि भी चले गए यहां जख मार के, उनको भी रास्ता नहीं मिला, ये कारण क्या है, परमात्मा ने कहा कि नौमन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उड़ जाए ना दूजी बार। परमेश्वर ने कहा कबीर साहब ने कि ये नौमन सूत उड़ जा दिया इन अज्ञानियों ने और साथ में इस काल ने ब्रह्म ने। पुण्यात्माओं, परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाहा थे, जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, और एक किलो सूत शेर का करते पहले एक शेर, एक किलोग्राम सूत यदि उलझ जा सारा दिन ना सुल जाए, क्योंकि जब उसने टूट गया तो गांठ पड़ेगी, गांठ पड़गी तो कपड़ा साफ बना नहीं, और कपड़ा सही नहीं बना तो बुनाई मिले नहीं, तो जुलाहे को फेंक देंगे ठाकर कि इसमें 20 गांठ लगा दी तूने। तो परमात्मा कहते हैं कि एक शेर एक किलोग्राम सूत को सुल जाने में सारा दिन लगाना पड़ता है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत नौमन उड़ जा दिया इन्होंने। कोई कुछ ज्ञान बताता है, कोई कुछ साधना बताता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही बताने की चेष्टा की गई है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऊपर को पैर करके योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना, और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर तुरंत कहा है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो स्वयं आकर के अपने मुख से जो वाणी बोली है वो 5वां वेद है, जिस वेद को काल भगवान ने नष्ट कर दिया था उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने आना पड़ा, और उस ज्ञान को ऐसे तरीके से बोल के लिखवा दिया कि ये विद्वान पुरुष जो एजुकेटेड मानते थे संस्कृत के ज्ञाता, वो इन्हों सोचे ये तो ऊट पटांग बकवाद कर रखी है, इसमें कुछ कोनी, नहीं तो इसने भी नाश करा देते है। तो परमात्मा ने ऐसे गुप्त ढंग से ऐसी वाणी से सिंपल सी ऐसे लोकल सी भाषा बोल कर पूरा माल भर दिया, उसमें पूरा ज्ञान ठोक दिया, और फिर अपने प्यारी आत्मा से बता दिया कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। जिनके समझ में आई बात, जिनको परमात्मा मिले सचखंड दिखाया वापस छोड़ा, उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी की तो बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी ये बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही, अगर ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले डिस्क्लोज हो जाता तो ये नकली संत पंथ ये डंडोरा पीटते मिलते और यही मंत्र देते मिलते, ये अधिकारी थे नहीं उस नाम के देने के, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट से भी विदेश नहीं जाया जा सकता। तो ऐसी बात बिगड़ जाती तो परमात्मा इस भक्ति को इस कलयुग तक लाए हैं। कहते सोशल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, हमारे लिए उन्होंने सोशल सीधर करने पड़े, और उस तत्व ज्ञान को आज बीचली पीढ़ी में लाकर अब डिस्क्लोज करवाए इस दास के द्वारा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये है मूल ज्ञान। और फिर परमात्मा ने एक वाणी और कही है कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या। 33 अरब वाणी बोल दी हमने इस कबीर सागर में और कबीर साखियों में दोहालियों में, लेकिन ये मूल ज्ञान जो था अब भी हमने गुप्त रखा हुआ था, और अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे। इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनके न्यूना जच्ची है कि हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं। और उनके उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलिया न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की कहे की माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से, उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूढ़ मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन न दे गड़जोट। इतने प्रमाण देख के, और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूढ़ है, मुग्ध मूढ़ ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे उन्ना दो रहे। एक भक्त कह रहा था जी ये आवत गए सारे जितने दूसरे पंथा दौरे बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला लें कि यह खराब होगी, झटकम पटकम आने लग रही है, जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दिया भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे, और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे कंडक्टर ड्राइवर के कहे पाछे भी, वे जब उतरेंगे जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वह जब उतरिया करें क्या सचमुच ये भी ना रहे इब्त। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी आते यहां तो पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी, यहां पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहते कहता हूं कही जात हूं कहूं बजा कर ढोल, और ये श्वास जो खाली जात है ये तीन लोक का मोल, एक श्वास की इतनी कीमत और मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सतभक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहां पर तो वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कुमार पल्ला ना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहां बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने हैं, यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो, अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं नहीं मानते हैं तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी, बस चेले बने रहे जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहेब के दरबार में गायक कोट अनंत और चार चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहेब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारुआ ने छोड़ गए और चाव है पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए, यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहां है, और ये अपना टिप्पणी दो फिर इसके ऊपर, क्यों नहीं बोलते 10 साल हो गए दास ने गला फटाते ने, और सरेआम कह रहा हूं टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूं पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूं। क्यों ना बोलते, ये क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये चोर है। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये चौरासी के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा कर सचखंड सचखंड का रट ला रहा, खैर कह खेगा पता नहीं इन लोगों को। जैसे वेदों को गलत मानने वाला कोई प्राणी नहीं, खासकर हिंदू समाज में। और ये जो राधा स्वामी पंथ है, इन्होंने के गुटी पैर रखी है श्रद्धालुओं को, क्या हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, ना हमने गीता जी की, ना हमने पुराणों से कुछ लेना देना। संत जो वाणी बोलते हैं वो फाइनल होती है। वो वेद भी तो किसी ने लिखे, वेद व्यास ने वेद लिखे हैं। अरे वेद व्यास ने वेद लिखे जरूर है, लेकिन ये वाणी किसकी है? वेद व्यास राइटर है, जैसे गीता जी का वेद व्यास राइटर है, वक्ता नहीं है। ऐसे ही पुराण लिखी है, तो पुराण जिसने जो बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया। जो चारों वेद थे, जो उनका यथार्थ ज्ञान ऋषियों ने घोट रखा था, वो एडिटी उन्होंने लिख दिया परमात्मा से प्राप्त करके, क्योंकि भगवान ने आके ज्ञान दिया था और ब्रह्मा जी से फिर ये ज्ञान सभी ने प्राप्त किया था। तो उसने केवल लिखा लिखा है, लेकिन ये गॉड गिवन है। और ये क्या बताते हैं कि संत जो भी नाम दे दे वो ठीक, उसी से मोक्ष हो जाएगा। और फिर ये भी कहते हैं कि हमने वेदों की जरूरत नहीं है, हमारा तो ज्ञान वेदों से ऊपर का है, वेदों से ऊपर का हमारा ज्ञान था। और हम जैसे कोई कहता अभी जैसे यहां कमल बताते हैं शरीर में पीछे, तो वो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमने त्रिकुटी यहां नहीं है, वैसे वो यहां बताते हैं जहां बैक होती है, और कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमारा तो वहां से मार्ग शुरू होता है। अब पुण्यात्माओं, जो वेद ज्ञान को गलत बताते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उनका ज्ञान तो घना निर्मल पाना चाहिए। वेदों से ऊपर का है, तो कुछ वेदों वाला भी थोड़ा बहुत समावेश चाहिए उसके अंदर। जैसे दसवीं का सिलेबस होता है, टेंथ का क्लास का, तो उसमें पहली से लेकर कैक है तो वहीं से शुरू होते हैं। तीसरी चौथी पांचवीं छठी आठवीं नौवीं का भी कुछ उसमें समावेश होता है ज्ञान का। और इनका ज्ञान दिखाते हैं आपको राधा स्वामी वालों का, जो ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो वेदों से ऊपर का है। अब दिखाता है इनका ज्ञान, दो बोल इनके भी सुनाए दूं राधा स्वामी वालों के। एक पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये देखिएगा इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये कहां से छपी है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब, 2003 में, ये 16वां संस्करण है। और ये यहां से छपी है, प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली इतने में। इसकी भूमिका में क्या लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक अजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम जिसने राधा स्वामी पंथ का चिमटा गाड़ा, जिसका प्रवर्तक माना जाता है, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता आथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। पुण्य आत्माओं, अब ये शिवदयाल जी तो थे सन 1818 में जन्मे आगरा में और इन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठड़ी में बैठ के और हठ योग किया। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता था, इसके अंदर से परमात्मा का सचखंड सतलोक की तद ढूंढ लिया, फिर कबीर साहिब की वाणी में तो ले लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है एक शब्द है 32 कली का, वो इन्हें खोलना आया ना, इनका समझ में आया नहीं, तो काल से प्रेरणा थी ही इनको और ये एक नकली सांग जोड़ कर बैठ गए। अब दिखाते इनका के ज्ञान था जो वेदों से भी उत्तम बतावे हैं और इस पुस्तक के अंदर जो लिखा है ये कहा गया है कि ये हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी अरिसी राधा स्वामी से सच्चा सौदा सिरसा वही ज्ञान वहीं से उपदेश प्राप्त है उनको और ये मथुरा के अंदर जय गुरुदेव और इधर ये ठाकुर जी महाराज थे एक और दिल्ली में कृपाल मिशन ये सारा एक का कुएं का पानी है। इस शिवदयाल जी के इस ज्ञान से समझ लेना उनके पास क्या है। और जनौद में एक महाराज हुए ताराचंद जी, वो भी श्राद्धा स्वामी के कुएं का पानी भर के यहां बांटे थे वही ज्ञान। ये देखना ये वही पुस्तक चल रही है सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये वही चल रही है। अब हम इसके यहां जाते हैं, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब शिवदयाल जी के वचनों का खुलासा लिख रखा है जो उसने बोलिया वो का वो। अब दफा एक में पढ़ते हम, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान, सतनाम स्थान कहा है, राधा स्वामी भी सतनाम का स्थान कहा है मुकाम, इनका ज्ञान देखियो तोड़ पाड़ रखे ने पहुंचावे, यानी राधा स्वामी स्थान में पहुंचावे, सतनाम स्थान में अपनी सूरत पहुंचा दे। फिर तीसरे वचन में गीता के से श्लोक बना रखे ने कति 118-150 वर्ष हो गए इनको न्यू के न्यू प्रिंट कर रखी है। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हरेक मजम में हुए हैं वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी तक पहुंचे। अरे वाह, अच्छा सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर पहुंचे। अब यह मंजिल पांचवी सतनाम और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पर पहुंचे। अब यहां देखो, अब आपने देख लिया, यहां तक क्लियर कर दिया ना कि सतनाम भी स्थान है, मंजिल कहो ये मंजिल का यहां अनुवाद भी कर रखा है, मंजिल माने स्थान, देखियो रहा मंजिल माने स्थान, यानी ये फिर देख लो क्योंकि ये घना गहरा ज्ञान है ना, इनका समझ में ना आवा जल्दी से। कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी सतान आठवीं यानी राधा स्वामी पर, सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर, सतनाम स्थान हो गया मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पे पहुंचे। अरे देखियो चार वचन प्रश्न नंबर 15 पे कमाल कर दिया, इसमें तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, वेद फेल कर दिए सारे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है, सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से दो स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए नींद में बोल रहे तारा गजब हो। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर पहुंचे, और मंजिल माने स्थान, और ये कहे हैं सतनाम तो स्थान हो गया, फाइनल हो गया कि सतनाम स्थान को कहते हैं। ये भी कहते हैं इस मुकाम से दो स्थान नीचे, और मुकाम भी स्थान उसे, अब सतनाम भूल जाओ हम, इस दो स्थान नीचे स्थान का स्थान है। ये वेद से गुढ़ ज्ञान है इनका, स्थान का स्थान है। और इस सतनाम को फिर कैसे डिफाइन किया देखना, परिभाषा कैसी बताइए। सतनाम का मुकाम है जिसको, इस सतनाम को संतों ने सतलोक सचखंड, सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी सतनाम को कहा है, और सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। जय हो राधा स्वामी आलो। ये इनका वेदों से भी ऊपर टॉप मोस्ट ज्ञान है। इन कह खेगा नहीं पता सतनाम खान का है कि पीण का है कि तो कोई स्थान है या नाम है। और दिखाता हूं थोड़ा और, इनकी कतिया अच्छी हिंदी हो जाएगी। अब एक पुस्तक है संत मत प्रकाश भाग तीन, ये पांच भाग हैं इनके संत मत प्रकाश के, और श्री सावन सिंह जी इनके राइटर हैं, यानी उनके सत्संगों का संग्रह है, इसमें वक्ता है। और श्री सावन सिंह जी जो हैं वो बाबा जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी थे तुरंत, और सावन सिंह जी के शिष्य थे ये कृपाल सिंह, जिन्होंने दिल्ली में अपना अलग मिशन बना लिया, और उन्हीं के शिष्य सच्चा सौदा सिरसा में जिन्होंने अलग स्थान बना लिया, सावन सिंह जी के थे। खेमामल नाम था उनका, बलोचिस्तान के रहने वाले थे, और फिर उनको सामस्ताना कहने लागे, और उन्होंने वहां अपना अलग से डेरा जमा लिया। ये उन्हीं का ज्ञान है इकट्ठा ही सबका। और अब आपको दिखाते हैं उस बाबा सावन सिंह जी के विचार थे, तो फिर अंडरस्टूड है कि सच्चा सौदा के होंगे, ये देखना। और शिवदयाल जी के हो गए फिर कहना है कि है। ये है संत मत प्रकाश भाग तीन, ये है संत मत प्रकाश भाग तीन, और ये है बाबा सावन सिंह जी, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग तीन हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपा है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब, और ये यहां से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाय गोपसंस पेपर लिमिटेड। अब इसमें दिखाते हैं आपको 102 पृष्ठ पे लिखा है, इसके 102 पृष्ठ पे संत मत भाग तीन यहां लिखा है। इसने इस सतपुरुष सतनाम कहाई सतलोक निज पाया आई, इसका डिफाइन किया इसने, इस सेंटेंस का, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, आगे ना सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, और सभी के अंदर है, आपके अंदर है ये सचखंड सतनाम। और अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि यहां कह रहा है ये सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, ये सतनाम चौथा लोक है, ये अपने अंदर है सबके। अब दिखाते हैं आपको 107 पृष्ठ पर, 106 पर देखना। वही सत्संगी हजूर, जहां राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? वह सत्संगी कहने लगा क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी यानी सावन सिंह जी कह रहे हैं राम चार हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब सत्संगी पूछे है कि हजूर चारों राम खोल के बताइए। महाराज जी लागे खोलन, फिर एक राम दशरथ गढ़डोल है, एक राम सब घट घट में बोल है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। और देखो इसका अनुवाद किया किसने, पहला राम राजा दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। अब दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है, चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है। इनका अकल देखो पत्थर पड़ रही इन पे, किता सतनाम सथान है, एव यो सतनाम राम है, यो असली राम है।